तो भगवत गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। तो इसमें यहाँ पर ये श्लोक भगवान कृष्ण के द्वारा कहा गया है और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। तो यहाँ पर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, आप बताइएगा कौन सा। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, कौन सा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसमें? कारण। ओके, और दोबारा सुनिए, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। समस्त, समस्त का मतलब क्या है? एवरीथिंग। इसमें कोई ऑप्शन नहीं रह गई। देखिए, समस्त आध्यात्मिक जगतों का कारण हूं और क्या कह रहे हैं, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली बातें जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो ये जो श्लोक है ये बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए है या फिर उन लोगों के लिए है जो बुद्धिमान बनना चाहते हैं? आप में से कितने लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं? तो शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, एक बार हम एक व्यक्ति से मिले थे तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या भगवान को देख सकते हैं? मैंने कहा हाँ देख सकते हैं। कह रहे नहीं, मतलब पर्सनल क्या मिल सकते हैं भगवान से, पर्सनल मिल सकते हैं? तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, मैंने उनको बोला कि आप भारत के प्रधानमंत्री को जानते हैं? वो कह रहे हैं हाँ जानता हूं। क्या आप मिल सकते हैं उनसे? कह रहे नहीं, उनसे मिलने के लिए कुछ योग्यता चाहिए होती है, कुछ क्वालिफिकेशन होती है, आप किसी पोस्ट पे हो, मिनिस्टर हो, कुछ हो तो आप उनसे मिल सकते हैं। तो मैंने बताया कि जब किसी, देखिए इस पृथ्वी के एक छोटा सा देश है भारत, जब उसके प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आपको एक क्वालिफिकेशन चाहिए, तो भगवान से मिलने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए? निश्चित रूप से चाहिए। और वो क्वालिफिकेशन क्या है? ज्ञान, नॉलेज, भगवत गीता ज्ञान, कि किस प्रकार से हम भगवान को देख सकते हैं, किस प्रकार से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। देखिए, हम मंदिर में आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, थोड़ी देर खड़े होते हैं, कुछ मांगते हैं और वापस चले जाते हैं, इसे दर्शन करना नहीं कहते। शास्त्रों के अनुसार बताया गया कि भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, पर प्रवेश करने का जो गेट है वो आइस नहीं है, आंखें नहीं है, वो ईयर्स है, कान, प्रविष्ठा कर्ण रंध्रेणा, कानों के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। इसलिए जो हम सुनते हैं, सुनने से हम भगवान के अच्छे दर्शन कर सकते हैं। केवल अपनी आंखों से देखने से हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ी देर के लिए दर्शन रहेंगे और बाद में हम भूल जाएंगे। क्योंकि देखिए, रियल दर्शन करना, रियल भक्ति करना, इसका मतलब होता है फॉलोइंग द ऑर्डर्स। मान लीजिए कोई पिताजी हैं, अपने बेटे को कहते हैं बेटे मेरे लिए पानी लेके आ, वो सुनता नहीं है, दोबारा बोलते हैं बेटे मेरे लिए पानी लेके आओ, सुनता नहीं है। तीसरी बार पिताजी को बोलते हैं बेटे तूने सुना नहीं क्या, मेरे पानी लेके आ। तो क्या बेटे ने पहले दो बार सुना था या नहीं सुना था? सुना था। फिर पिताजी ने क्यों बोला तूने सुना नहीं क्या, क्या कारण था? बोलिए बोलिए। सुनी कौन, सुना किया, क्योंकि उसने ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया। तो उसी प्रकार से भगवान को जानना, भक्ति करना, इसका मतलब है फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ लॉर्ड, भगवान के आदेशों का पालन करना, भगवान क्या कह रहे हैं उसे समझना। तो यहां पर क्या बता रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं यहां पर, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। तो अधिकांश, देखिए, कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता कि भगवान कारण है। जब प्रॉपर्टी के साइन होते हैं तो प्रॉपर्टी जब रजिस्ट्री होती है तो उसमें क्या आता है? लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का क्या मतलब है? इस लैंड का मालिक। तो रियल लैंडलॉर्ड कौन है? भगवान। रियल लैंडलॉर्ड भगवान है। पर हम लोग क्या है, क्योंकि देखिए, जो क्वालिटी भगवान में है, भगवान पूर्ण है, और जो जीव है वो भगवान के अंश है, जितनी लिविंग एंटिटीज है वो भगवान के अंश है। तो जो भी भगवान में क्वालिटीज हैं, कुछ कुछ मात्रा में वो क्वालिटीज जीवों में भी होती है। तो भगवान में क्या क्वालिटी है? मतलब भगवान कंट्रोल कर सकते हैं सब चीजों को, पर जो जीव है वो सोचता है कि किसी को कंट्रोल कर लेगा पर कंट्रोल नहीं कर पाता। एक बार एक मायावादी कहता है, प्रभुपाद के पास आए मायावादी, और प्रभुपाद को कहते हैं, प्रभुपाद आई एम गॉड, मैं भगवान हूं। तो प्रभुपाद उनसे काफी देर तक बातचीत करते रहे, तो लगभग दो घंटे तीन घंटे के बाद वो व्यक्ति उठना चाहता था। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? वो व्यक्ति कहता है मायावादी कि मुझे वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है। तो प्रभुपाद ने कहा अगर आप भगवान हो तो आप कंट्रोल क्यों नहीं कर लेते? भगवान तो पूरी सृष्टि को कंट्रोल कर सकते हैं, आप टॉयलेट कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि हर व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, किसी ना किसी मात्रा से भगवान बनने की जो योजना है उसके अंदर चल रही होती है ना। तो अगर इसका कोई डायरेक्ट एग्जांपल देखना चाहते हैं तो कुंभ के मेले में जा सकते हैं, अलग अलग भगवान मिलते हैं वहां पर बहुत कैटेगरीज के। पर शास्त्रों के अनुसार भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभु हो, और भगवान ये मजाक नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान अपने, देखिए रियल फ्रेंड की डेफिनेशन ये होती है, असली मित्र वो होता है जो हमारी सारी जरूरतों में हमारे काम आए, असली मित्र वो है। पर आप देखिए, मान लीजिए कोई आपका मित्र है, जब आपको जरूरत पड़ी आपके साथ था ही नहीं तो आपकी मदद कैसे करेगा? परंतु भगवान परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय में है ना। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदेश अर्जुन तिष्ठति, हृदेश हृदय के अंदर भगवान परमात्मा रूप में हर किसी के हृदय में वास करते हैं, और जो भी उसको कम्युनिकेट करना होता है भगवान क्या करते हैं? परमात्मा रूप में हृदय से कम्युनिकेट करते हैं। और जब भी हमारी नीड होती है भगवान हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमेशा हमारे साथ रहते हैं। पर अधिकांश क्या है, जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, जितने भी जीव हैं, हर कोई अज्ञानता में रहता है और भगवान के इस गुण को नहीं समझ पाता कि कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, भगवान जो है परम नियंता है। और ये जो नियंता बनने की भावना हर किसी में रहती है कि माता पिता चाहते हैं बच्चे मेरी बात माने, चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं। बच्चे चाहते हैं माता पिता मेरी बात माने, है ना। सास चाहती है बहू मेरी बात माने, बहू चाहती है सास मेरी बात माने। तो क्या है, अल्टीमेटली हर कोई कंट्रोलर बनना चाहता है कि हर कोई मेरी बात सुने, हर कोई मेरी बात माने। पर ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, केवल कृष्ण के अलावा ये कोई नहीं कर सकता। कृष्ण से एक बार माता यशोदा ने पूछा कि आप गायें चराने के लिए जाते हो रोज कृष्ण, तो आपको क्या कोई दिक्कत होती है? तो कृष्ण ने बोला दरअसल माता हम जब गायें चराने के लिए जाते हैं तो मैं कभी गायें चराता ही नहीं हूं, वो तो अपने आप ही चलती हैं। क्योंकि कृष्ण क्या है, सर्व आकर्षक है, कृष्ण को गायें चरानी नहीं पड़ती थी। जब कृष्ण को गायें देखती थी तो अपने आप कृष्ण के प्रति, कृष्ण की तरफ भागती थी। तो एक बार मैंने भी सोचा मतलब कि कृष्ण 9 लाख गायें चराते थे तो मैं भी ट्राई करके देखूं। तो हमारी बहादुरगढ़ में गौशाला है, तो वहां पर एक छोटा सा बच्चा था, गाय नहीं बच्चा उसका, मैंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, वो एक इंच नहीं हिला पाया उसको। फिर मेरे को समझ आया कि कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, क्योंकि भगवान को गायों को कंट्रोल करने में कुछ करना नहीं पड़ता था, जिस तरफ कृष्ण जाते थे गाय अपने आप वहां पर भागती थी। और अगर कोई गाय काम हो जाती थी तो कृष्ण के पास एक माला होती है, जैसे हम लोग माला करते हैं ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण के पास एक माला होती है 108 मोती की, क्योंकि कृष्ण की जितनी भी गायें हैं 108 डिविजन्स में बटी हुई है, है ना। कोई मृदंग मुखी है, इसका मुख जो है मृदंग के समान है ना। तो ऐसे अलग अलग कृष्ण की गायें हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, मान लीजिए कोई गाय एब्सेंट है, पहुंची नहीं, तो बांसुरी बजाते हैं, उस बांसुरी की ध्वनि को केवल वो गाय सुन पाती है, और गाय समझ जाती है और कृष्ण के पास पहुंच जाती है। अभी हमें क्या करना पड़ता है, किसी को बुलाना पड़ता है तो फोन करना पड़ता है। तो कृष्ण का जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, बांसुरी। वैसे तो कृष्ण सर्व आकर्षक है ना, कृष्ण किसी भी स्थान पर निकलते हैं तो सारी लिविंग एंटिटीज, बताया जाता है कि जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में थे और युद्ध शुरू होने वाला था, तो जितने भी योद्धा हैं, चाहे वो कौरवों की तरफ के हो चाहे वो पांडवों की तरफ के, हर कोई योद्धा कृष्ण की सुंदरता से आकर्षित हो गया, इतने सुंदर थे कृष्ण। और जो जिन्होंने भी कृष्ण के सामने शरीर को त्यागा उनको तुरंत भगवत धाम प्राप्त हुआ। पूतना जब कृष्ण को मारने के लिए आई तो जैसे ही कृष्ण को देखा पूतना ने, उसका हृदय पिघल गया कि कितना सुंदर बालक है, आकर्षित हो गई। क्या कोई दुश्मन अपने दुश्मन के प्रति आकर्षित होता है? नहीं होता। पूतना मारने के लिए आई, आकर्षित हो गई। जितने भी असुर मारने के लिए आते थे पहले ग्लांस में वो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाते थे, मोहित हो जाते थे, पर क्योंकि उनका स्वभाव आसुरी था तो अपने स्वभाव के कारण कृष्ण को मारने की कोशिश करते थे। तो कृष्ण क्या है, सुप्रीम कंट्रोलर। ये कैसे पता लगता है, कृष्ण जब 6 महीने के लिए के थे तो उन्होंने पूतना का वध किया। बताया जाता है पूतना 8 मील बड़ी थी, 8 मील 8 miles लॉन्ग ये पूतना का साइज था, और कृष्ण कितने थे, छोटे से बच्चे 6 महीने के। उस अवस्था में भी कृष्ण ने पूतना का वध किया, और बताया जाता है कि पूतना का वध किया और पूतना का वध करने के बाद पूतना को क्या उपाधि दी, अपनी माता की। किस कारण से? क्योंकि पूतना किस लिए आई थी? कृष्ण को अपना दूध पिलाने के लिए आई थी। तो कृष्ण ने क्या किया, उसकी बैड क्वालिटीज को नहीं देखा, बुरी विचारों को नहीं देखा कि मुझे मारने के लिए आई थी, उसके अच्छे गुण को देखा कि चाहे मेरे को मारने के लिए आई थी पर आई तो मेरी माता यशोदा की तरह थी। तो कृष्ण ने क्या दिया, उसे अपनी माता की उपाधि दी गोलोक वृंदावन में। तो ये कृष्ण की मानता है। यहां पर कोई किसी का वध करेगा तो क्या करेगा, उसको क्या अच्छा स्थान दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके अपने हाथ में नहीं है। किसी भिखारी से अगर भीख मांगेंगे तो क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। तो इसी प्रकार से जो पूरा का पूरा संसार है वो अज्ञानता में है, और हर कोई क्या कर रहा है, कंट्रोल करना चाहता है ना। अच्छा, आप में से कौन कौन ऐसे हैं जिनकी बात ना मानी जाए तो उनको दुख होता है? टूली भगवान सामने है, हाथ खड़ा कीजिए। दुख होता है बात नहीं मानी जाए तो, है ना। पर सोचिए, कृष्ण परमात्मा रूप में बताया, श्वेताक्षर उपनिषद में बताया गया है कि ये जो शरीर है एक वृक्ष के समान है, और इस वृक्ष में दो पक्षी हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा कौन है? जीवात्मा, हम सब। और परमात्मा कौन है? कृष्ण। ये आत्मा क्या कर रहा है? फलों को खा रहा है ना, कृष्ण की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। और परमात्मा क्या कर रहे हैं? सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये मेरी तरफ देखेगा और मैं इसका उद्धार करूंगा। तो कृष्ण में किसी भी प्रकार का ग्रज नहीं है। कृष्ण को कभी भी दुख नहीं लगता कि कोई उनकी बात नहीं माने। कृष्ण बल्कि ये चाहते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से जीव आत्मा है, जितने भी लिविंग एंटिटी जो सफर कर रही है मटेरियल वर्ल्ड में, वो मेरे पास आ जाए। और इसको करने के लिए कृष्ण क्या करते हैं? भगवद गीता का ज्ञान देते हैं, नॉलेज, है ना। कोई भी किसी कंपनी में अगर किसी को जॉब करनी हो तो क्वालिफिकेशन क्या होती है, किस क्वालिटी पे लिया जाता है? एजुकेशन। क्या एजुकेशन है उसके पास? एजुकेशन देखी जाती है, आप कितने पढ़े लिखे हो। मान लीजिए किसने डॉक्टरी की सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, सब कुछ याद है, परंतु किसी प्रमाणिक संस्था से उसने डिग्री प्राप्त नहीं की, तो क्या उसे आप अपना ऑपरेशन करने देंगे? मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आए, वो कहे जी मेरे को सर्जरी मैंने पूरी सीखी हुई है, सर्जरी कैसे करते हैं पेट की, और हाँ मेरे पास डिग्री नहीं है पर मैंने सीखी हुई है सर्जरी कैसे करते हैं, तो क्या उसे अपने पेट की सर्जरी करने देंगे? नहीं करने देंगे, उसकी क्वालिटी नहीं है। तो कृष्ण क्या करते हैं? भगवद गीता का ज्ञान देते हैं जीवों के उद्धार के लिए, कि भगवद गीता सब पढ़ें और मेरे पास वापस आए। अलग अलग रूपों में आते हैं, कृष्ण, राम, वराह, है ना, मत्स्य, ऐसे अलग अलग अवतारों में कृष्ण अवतार आते हैं, और जीव आत्मा को अपनी लीलाओं के द्वारा सिखा के जाते हैं कि किस प्रकार से मेरी लीलाओं के प्रति आकर्षित होकर आप मेरे पास आ सकते हैं। तो ये जो क्वालिटी है ये और किसी व्यक्ति में नहीं है। इस भौतिक संसार का व्यक्ति पांच प्रकार के अज्ञानता में हमेशा डूबा रहता है। आप में से जिसके पास पेन पेपर है या मोबाइल में नोट कर सकते हैं, ये नोट कर सकते हैं। पहली अज्ञानता है तमिश्र। तमिश्र का मतलब क्या होता है? क्रोध। आप में से किसी को गुस्सा आता है? सबको आता है। क्रोध, तमिश्र का मतलब क्या होता है? क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष दिखाना किससे, ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, किसी ना किसी प्रकार से किसी को नीचे खींचना, है ना, या फिर अगर नीचे खींच नहीं पा रहे, बस नहीं चल रहा, तो गुस्सा दिखाना। एक बार एक व्यक्ति एक जहाज में केकड़े का डब्बा लेके जा रहा था, वो जहाज के कैप्टन ने बोला, भैया ये क्या कर रहे हो आप, अगर ये चिमनी पे चढ़ गए तो हमारा जहाज डूब जाएगा। उस व्यक्ति ने बोला, आप चिंता मत कीजिए, ये केकड़े चिमनी पे नहीं चढ़ पाएंगे। वो कह रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं? वो कह रहे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं। उसने क्या किया, जार को खोल दिया, जितने भी केकड़े थे सब चिमनी की तरफ भागे और ऊपर चढ़ना शुरू किया। कप्तान ने बोला, देखा मैंने बोला था ना ये चढ़ जाएंगे, अब हमारा जहाज डूब जाएगा। उसने बोला, आप देखते रहिए बस। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, कोई भी केकड़ा ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। कारण क्या था? एक चढ़ता था, दूसरा नीचे से पैर खींच देता था, वो नीचे गिरता था। वो चढ़ता था, तीसरा नीचे से पैर खींच देता था, वो गिर जाता था। तो ये क्या है? द्वेष। इस भौतिक संसार का हर व्यक्ति इस तमिश्र नाम की अज्ञानता में है। पहली अज्ञानता द्वेष। हर कोई द्वेष करता है, हर कोई अपनी मोनोपोली बनाना चाहता है कि मेरे से आगे कोई ना बढ़ पाए। जो बिजनेस मैं कर रहा हूं, इस बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर ना हो पाए। जिस जॉब में मैं हूं, कोई इतना क्वालिफाइड ना हो पाए कि मेरे को कोई कॉम्पीट कर पाए। हर कोई द्वेष करता है, कोई किसी को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता। पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। अभी मान लीजिए भौतिक जगत में क्या होता है, एक रसगुल्ला दो खाने वाले, तो क्या लड़ाई होती है? क्या लड़ाई होती है? सिंपल बताइए, बोलिए क्या लड़ाई होगी? एक रसगुल्ला दो खाने वाले, कौन खाएगा? मैं खाऊंगा, वो कहेगा मैं खाऊंगा। आध्यात्मिक जगत में भी जब एक रसगुल्ला और दो लोग होते हैं तो भी लड़ाई होती है, पर वो क्या लड़ाई होती है? वो कहता है आप खाओ और वो कहता है आप खाओ। तो ये जो द्वेष है ये हर बद जीव में पाया जाता है इस भौतिक संसार के। एक बार क्या हुआ कि देवी देवता एक, समझ लीजिए, एक दो अलग अलग कमरों में, एक में देवी देवता थे और एक में असुर थे, दोनों को रखा गया। तो सबके हाथ में रसगुल्ला दिया गया, है ना, स्वीट दी गई और उनको बोला आपको इसको खाना है। पर खाना कैसे है, ये हाथ बेंड नहीं करना, बिना हाथ बेंड के खाना है। आप सोचिए कोई खा सकता है क्या? कोई खा नहीं सकता। तो असुर, तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जब असुरों के कंपार्टमेंट में गए तो कोई असुर खा ही नहीं पाया। हर कोई उछाल के कोशिश करता था, हाथ तो बेंड करना नहीं है, उछाल के कोशिश करता, कोई खा ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि द्वेष है अंदर, कोई नहीं खा पाया। फिर दूसरा उन्होंने क्या किया, देवी देवताओं के कंपार्टमेंट में गए। ये लोग क्या करते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे थे, अगर उनके हाथ में रसगुल्ला पड़ा है तो खुद नहीं खा रहे थे, उस हाथ से दूसरे को खिला रहे थे और वो दूसरे को खिला रहा था। तो क्या सबने खाया भी, और आप समझ पाए उदाहरण को? तो ये जो द्वेष है इस भौतिक जगत के हर व्यक्ति में पाया जाता है, कोई भी नहीं देख सकता कि उससे आगे कोई बढ़ जाए। तो ये पहली अज्ञानता है द्वेष।
दूसरी क्या है?
अंध तमिश। पहली है तमिश, दूसरी है अंध तमिश। ये सोचना कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मृत्यु के बाद आगे कुछ भी नहीं है, है ना, खाओ पियो ऐश करो, है ना। एक चर्वक मुनि थे तो वो कहते थे कि किसी ना किसी प्रकार से घी खाओ, बैग बोर और स्टील बट ईट घी। किसी ना किसी प्रकार से घी खाओ, पर इस लाइफ में जितना इंजॉय कर सकते हो इंजॉय करो, अगला जन्म किसने देखा है। पर शास्त्रों के अनुसार और जो लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ही मानते हैं, तो रीइनकार्नेशन पे कितनी बुक्स लिखी जा रही हैं, कितने सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जो व्यक्ति अपने पिछली लाइफ को बताता है, वो स्थान बताता है जहां पर उसकी मृत्यु हुई थी, गोली लगने से मृत्यु हुई थी, एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, और किस प्रकार से रीइनकार्नेशन से बुक्स आ रही हैं। तो इस लाइफ के बाद नेक्स्ट लाइफ है। पर जो अंध तमिश में व्यक्ति होता है वो सोचता है कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म है, इस लाइफ में जितना इंजॉय कर सकते हो इंजॉय करो, जितना भोग सकते हो भोगो। तो ये जो इग्नोरेंस है हमें हमेशा दबा के रखती है। तीसरा क्या है? तमस। तमस का मतलब क्या है? ये नहीं जानना कि मैं आत्मा हूं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता इस भौतिक संसार में कि मैं आत्मा हूं, है ना। जब व्यक्ति नया नया मंदिर में आता है, विशेष रूप से एस्कॉन टेम्पल्स में, इसलिए हमारे जितने भी मंदिर हैं इनका नाम क्या होता है, श्री श्री राधा राधिकारमण कृष्ण बलराम मंदिर और एवं वैदिक एजुकेशन सेंटर, क्योंकि यहाँ पर वैदिक एजुकेशन दी जाती है। अदरवाइज क्या है, कितने मंदिरों में हम लोग जाते हैं घंटी बजा के आ जाते हैं, घंटी बजा, क्योंकि नॉर्मल कल्चर है मंदिर में जाना। पर मंदिरों में क्या है, ज्ञान नहीं दिया जाता कि भगवत गीता का जो नॉलेज है ये हिडन है। ज्यादा से ज्यादा कोई भगवत गीता पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, महात्म्य, भगवत गीता महात्म्य, कि भगवत गीता पढ़ के आपको क्या क्या मिल सकता है, पर भगवत गीता नहीं पढ़ते वो लोग। तो ये मैं जो शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस नॉलेज को कोई भी जानता नहीं है। और जो व्यक्ति जानता नहीं है वो आत्मा है, इसका मतलब क्या है, वो तमस तामस नाम के अज्ञानता में है, इग्नोरेंस में है। तो ये तीसरी प्रकार की अज्ञानता है। तो जो भी डिवोटिस हैं, भक्त लोग हैं, जो गीता पढ़ते हैं, उनका एक स्वभाव होता है इस नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। हम भी अगर किसी से मिलते हैं, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, और अगर हमें नॉलेज है, अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम आया है मंदिर में और किसी को इतना नॉलेज नहीं है, तो हमारे मंदिर में विशेष रूप से हर फेस्टिवल्स के बाद 7 डे सेशंस होते हैं। उन सेशंस में भगवत गीता को 7 डे कोर्स में पढ़ाया जाता है, 7 डेज के अंदर। और किस प्रकार से बताया जाता है कि हम कौन हैं, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, इस जन्म के बाद हम कहाँ जा सकते हैं, कैसे हमारी डेस्टिनी हमारे अपने हाथ में भी निर्भर करती है, किस प्रकार के कर्म करके हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं, किस प्रकार के गलत कर्म करके हम लोग नरकों में जाते हैं, और किस प्रकार के कर्म करके हम स्वर्ग में जा सकते हैं। तो ये सब चीजें उन सेशंस में बताई जाती हैं। तो हालांकि एक शॉर्ट में, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, इस बात को कोई भी व्यक्ति जानता नहीं है। श्री प्रभुपाद भी बहुत चिंतित होते थे। प्रभुपाद एक बार एक यूनिवर्सिटी में गए तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रभुपाद को हर डिपार्टमेंट में लेके जा रहे थे, है ना, साइंस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में लेके जा रहे थे। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि क्या है आपके यहाँ पर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो सोल का नॉलेज देता है? वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो ये ज्ञान देता है? तो उन्होंने बोला नहीं। तो प्रभुपाद जी को इस बात पर बहुत दुख हुआ कि जो मुख्य ज्ञान है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान के अंश है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, जीव का स्वरूप है कि भगवान का दास है, एटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। आप देखिए कोई बच्चा है, सिंपल सा है, अगर आप रोड पे जा रहे हैं, आपको कोई बच्चा रोड पे मिला तो नेचुरली कंपैशन हमारे अंदर आता है, छोटा बच्चा है, रो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको खाने के लिए कुछ देंगे, है ना, कुछ खाने के लिए दे दिया उसको, कुछ अच्छे कपड़े दे दिए पहनने के लिए, है ना, उसकी थोड़ी टेक केयर कर ली। पर रियल सर्विस क्या हो सकती है उस बच्चे की, असली सेवा उस बच्चे की क्या हो सकती है? यस, उसको उसके माता पिता से मिलाना। अगर हम उसको उसके माता पिता से मिला देंगे तो सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगी। तो इसी प्रकार से इस वक्त भौतिक संसार में, मेटेरियल वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कितनी ऐसी सोसाइटीज हैं जो सोशल वर्क पे बहुत फोकस करती हैं, है ना, अनाथ आश्रम बनाना, है ना, शमशान घाट में दान करना, हॉस्पिटल्स बनाना। ये नहीं कहा जा रहा कि ये कार्य गलत है, इसकी भी नीड है, पर मुख्य रूप से ये जो एक्टिविटी है ये उसी प्रकार से, आपको कोई बच्चा मिला और आपने उसको खाने पीने के लिए कुछ दे दिया। पर रियल वेलफेयर क्या हो सकता है लिविंग एंटिटीज का, कि हम उस लिविंग एंटिटीज को उसके माता पिता से मिलाएं। जितने भी लिविंग एंटिटीज हम मिलते हैं, जीवों से मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स, उनको रियल नॉलेज दे, स्पिरिचुअल नॉलेज दे, उनको ये बताएं कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। तो ये जो नॉलेज है तमस नाम का अज्ञान, अधिकांश लोगों इसके बारे में पता नहीं होता और हर कोई अपने आप को शरीर मान के हर प्रकार के कार्य में लगा रहता है ना? और अल्टीमेटली क्या है, इस शरीर को हमें छोड़ना ही है। जब हम किससे बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, एज श्योर एज डेथ, है ना, डेट श्योर, कि जिस प्रकार से मृत्यु निश्चित रूप से आनी है उसी प्रकार से ये कार्य भी होगा, ये हमारे कहने का मतलब होता है। तो मृत्यु हर व्यक्ति को आनी है, ना, चाहे कोई 2 साल का बच्चा है अभी, चाहे कोई 3 साल का है, चाहे कोई 4 साल का है, चाहे कोई 60 साल का है, हम ये नहीं बता सकते कि उसकी मृत्यु कब आनी है। देखिए आप सब यहां पर आए हैं तो क्या आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है, नो डेथ सर्टिफिकेट, है ना, जिसमें आपको बताया गया हो कि आपकी मृत्यु नहीं आएगी? किसी के पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि मेरी मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु किसी पल भी आ सकती है। एक छोटा सा उदाहरण, मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, मैं बहुत छोटा था तो फादर बताते थे, तो उनके जो फ्रेंड थे वो 4th फ्लोर से नीचे गिरे थे, 4th फ्लोर। वहां से गिरने के बाद क्या हुआ, उनकी बॉडी की सारी बोन्स टूट गई थी। 9 मंथ्स लगे थे उनको रिकवर होने में। तो जब वो 9 मंथ्स के बाद रिकवर हुए, उसके बाद 2-3 साल के बाद वो दोबारा खेल रहे थे, तो खेलते खेलते क्या हुआ, पटरी होती है ना रोड के कॉर्नर में, इतनी ऊंची पटरी से नीचे गिरे और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो किसी की भी बॉडी, किसी के लिए भी हम ये नहीं कह सकते कि आप कब तक जिएंगे। इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति अपनी डेथ के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा अभी, इसका मतलब क्या है, वो इग्नोरेंस में है, अज्ञानता में है। ये जो लाइफ है, दरअसल जो हमें लाइफ मिली है, अल्टीमेटली दिस इज अ प्रिपरेशन, ये एक प्रिपरेशन है हमारी डेथ के लिए, मृत्यु के लिए प्रिपरेशन, की हमारी मृत्यु कैसी होगी। देखिए जो मनी माइंडेड लोग होते हैं, मृत्यु के समय उन्हें क्या याद आता है, पैसा। जो सोशल वर्क में जुड़े होते हैं, मृत्यु के समय उन्हें क्या याद आता है, सोशल वर्क, सोशल एक्टिविटीज। जो फैमिली से बहुत अटैच होते हैं, उनको मृत्यु के समय क्या आता है, फैमिली, ना? एक बार एक व्यक्ति था, वो डेथ बेड पे था, बूढ़ा व्यक्ति, तो उसने अपने छोटे बेटे को देखा, तो उसने बोला मेरा बीच वाला बेटा कहां पर है। बीच वाला बेटा आ गया, उसने बोला बड़ा वाला कहां पर है। बड़ा वाले ने बोला मैं भी यहीं पर ही खड़ा हूं पिताजी। उसने बोला तीनों बेवकूफ हो, यहां पर हो तो दुकान पे कौन है। तो मृत्यु के समय भी, क्योंकि इतने मनी माइंडेड होते हैं, मनी ही याद आती है। तो लाइफ क्या है, लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर डेथ। अल्टीमेटली लाइफ हमें मिली है डेथ को प्रिपेयर होने के लिए, कि डेथ के समय, मृत्यु के समय हम किस चीज का स्मरण करेंगे। क्योंकि भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे हैं, अंतकाले च माम एवं स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है क्या होता है, स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण करने मात्र से मुक्त हो जाता है। तो लाइफ क्या है, प्रिपरेशन है कि डेथ के समय हम भगवान का स्मरण कर सके, भगवान के नाम का स्मरण कर सके, भगवान के रूप का स्मरण कर सके, भगवान की लीला का स्मरण कर सके। इसलिए हमें लाइफ मिली है। तो क्या है, ड्यूरिंग अवर लाइफ हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा, भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे, कीर्तन करना पड़ेगा हमें। अभी जब कीर्तन हो रहा था तो आप में से कीर्तन में कितने भक्त थे, आप में से कितने लोग कीर्तन के समय बोर हो रहे थे? हर कोई कीर्तन में एंजॉय करता है ना। आप देखिए हरिदास ठाकुर 192 माला करते थे, 192 राउंड्स करने में हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली 24 आवर्स लगते हैं। 24 घंटे वो जप करते थे भगवान का, बोर नहीं होते थे। अगर हम किसी का नाम ले, मान लो हमारे अपना बेटा बहुत प्रिय है, उसका नाम लेते रहे हम चिंटू 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 चिंटू, कितने समय लेंगे? दिमाग खराब हो जाएगा थोड़े समय में। मान लो हमें आम खाना है, थोड़े समय बोले आम 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 आम, गला सूख जाएगा, है ना। पर भक्त जब माला करते हैं तो थकते नहीं है माला करते हुए, है ना। तो क्या है, क्योंकि भगवान का नाम है, दिस इज अवर, ये हमारा इटर्नल रिलेशन है भगवान के साथ। ये करने में हमें एफर्ट्स नहीं करना है ना। जो कृष्ण भक्ति है वो जीव के हृदय में क्या है, सुप्त अवस्था में है। सुप्त अवस्था का मतलब क्या होता है, स्लीपिंग फॉर्म। कोई जब सोया होता है तो क्या करना चाहिए हमें, उठाना चाहिए उसे, है ना। कोई सोया हुआ तो क्या करते हैं, उठाते हैं उसे। तो कृष्ण भक्ति भी हमारे हृदय में सोई हुई है। क्यों? क्योंकि इतनी लाइफ टाइम से हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटीरियल वर्क्स में इन्वॉल्व है। उस कारण से क्या है, जो कृष्ण कॉन्शियस है वो सोई हुई है। अब हमें क्या करना है, जगाना है इसे। और जगाने का प्रोसेस क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रोसेस के माध्यम से हम जो अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस है, क्योंकि कृष्ण भक्ति हर किसी के हृदय में है, किसी को कृष्ण भक्ति दी नहीं जाती, हर कोई कृष्ण भक्त है। हमें क्या करना है, सिर्फ उसे रिमाइंड करवाना है। जैसे हनुमान जी थे, तो हनुमान जी का वो पास्ट टाइम आपको पता होगा, जब हनुमान जी को जब लंका जाना था समुद्र पार करके, तो हनुमान जी को रिमाइंड करवाया गया कि आपके पास शक्ति है कि आप जा सकते हो, क्योंकि वो भूल गए थे श्राप के कारण। उनको श्राप दिया गया था ऋषि मुनि के कारण कि आप भूल जाओ, तो भूल गए थे कि मैं जंप मार के जा भी सकता हूं। तो उनको याद दिलाया गया, और जैसे याद दिलाया गया वो क्वालिटी उनमें पहले से थी, प्रैक्टिस नहीं करना था। तो क्या है, भक्ति करने की क्वालिटी, भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, ये क्वालिटी ऑलरेडी हमारे अंदर है। हमें क्या करना है, सिर्फ इसे जगाना है, भक्तों के संग के माध्यम से, कीर्तन सुनके, भगवत गीता सुनकर, भागवतम सुनकर। अब देखिए भागवत, अभी आप सब भगवत गीता सुन रहे हैं, आप में से किसको ट्रबल आ रहा है? सिर्फ सुनना है भगवान का, केवल परीक्षित महाराज ने क्या किया, 7 दिन तक श्रीमद् भागवतम का पाठ सुना और 7 दिन के बाद भगवान के धाम चले गए। सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन तक भागवतम को बोला, 7 दिन के बाद भगवान के धाम चले गए। और ये लोग सब नित्य मुक्त आत्माएं हैं, नित्य मुक्त जीव हैं, ये सिर्फ हमें सिखाने के लिए आते हैं। पर ये सिखाने के लिए आते हैं कि केवल सुनने मात्र से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, केवल भगवान का नाम लेने मात्र से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, केवल भगवान का स्मरण करने मात्र से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, केवल भगवान की पूजा करने मात्र से, विग्रह की पूजा करने मात्र से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी माध्यम है, हम कौन सा करना चाहेंगे हमारे पर डिपेंड करता है। कुछ भक्तों को माला करना बहुत अच्छा लगता है, वो अधिक से अधिक भगवान का नाम लेना चाहते हैं। कुछ लोगों को कीर्तन अच्छा लगता है, आप में से कितने हैं जिनको कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है? कीर्तन में घंटे घंटे बैठ जाते हैं हम लोग, है ना। कीर्तन में 6 घंटे बैठना आसान लगता है और 2 घंटे माला करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो अपना नेचर होता है। कुछ भक्त होते हैं जिनको डीटी वर्शिप करना बहुत पसंद अच्छा लगता है। तो हर किसी का स्वभाव है अपना, पर किसी ना किसी ये न के न प्रकार है ना मना कृष्णा निवेश, किसी ना किसी प्रकार से हमें अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाना है। क्योंकि ये दुष्ट मन है, दुष्ट मन क्या करता है, हमें बार बार खींचता है कृष्ण की तरफ, हम जाना चाहते हैं पीछे खींचता है, जाना चाहते हैं पीछे खींचता है। अभी भी हम सुन रहे हैं, हो सकता है हम कथा में बैठे हैं पर कथा हमारे में ना बैठ रही हो। क्यों? क्योंकि माइंड अभी भी घर में है। हो सकता है कोई माता जी सोच रही हो कि घर में बच्चे हैं भूखे, घर जाके खाना बनाना है ना। प्रभु जी सोच रहे हो कि बिजनेस में आज नुकसान हुआ है ना, या कल उसकी डीलर देनी है, कल उसको माल सप्लाई करना है, वो चल रहा होता है एक अलग, एक बैक थॉट में वो चल रहा होता है, इधर भक्ति चल रही होती है, वो क्लैश कर रहा होता है कुछ। तो हमें क्या करना है, कृष्ण कॉन्शियस क्वालिटी को बढ़ाना है। जब हम सुन रहे हो तो हमें प्रयास से करना है कि भक्ति से संबंधित पूरे अपने माइंड को फोकस करें। अगर हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं, देखिए ना, होशियार बच्चा कौन सा क्लास में होता है, जो टीचर को सुनता है, जो टीचर की सुनेगा ही नहीं वो इंटेलिजेंट कैसे बनेगा। कोई बच्चा क्लास में गया, टीचर बोलती जा रही है वो बातें कर रहा है ना, सभी का एक्सपीरियंस होगा क्लासेस का। टीचर बोलती थी तो क्या करते हैं बच्चे, है ना, चौक मारते हैं एक दूसरे को। तो ये नेचर होता है ना? तो क्या है, अगर कोई टीचर को सुनेगा ही नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा? तो कृष्णा कॉन्शियस में आगे बढ़ने का सबसे इजी वे क्या है? हियरिंग, है ना? इसलिए जो नवदा भक्ति बताई गई है उसका पहला क्या है? श्रवण, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, पहला बताया गया श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा विष्णु स्मरण, चौथा पाद सेवनम भगवान के चरणों की सेवा, पाद अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नाइन प्रकार, नाइन टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस बताई गई है जिसके माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जीव आत्मा जो लिविंग एंटिटीज हैं, जब ये भूल जाती हैं कि हम भगवान के दास हैं और हमारा नेचर भगवान की सेवा करना है, तो वो इग्नोरेंस में रहती हैं। तो अभी तक हमने तीन प्रकार के इग्नोरेंस की, अज्ञानता की चर्चा की। पहला क्या था? तमिष, तमिष का मतलब द्वेष, क्रोध। दूसरा क्या था? अंध तमिष, अंध तमिष का क्या मतलब है? ये सोचना कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, है ना? मृत्यु के बाद सब समाप्त है ना, गाने ही बनते हैं ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, तो हर कोई इसी गाने पर चल रहा है सब। और तीसरा था तमस, ये जानना, ये नहीं जानना कि मैं आत्मा हूं। और चौथी अज्ञानता है मोह, अपने आप को शरीर समझना, है ना, या इस शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं मेरी हैं, अपने आप को बॉडी मानना, शरीर मानना कि मैं शरीर हूं। तीसरा था कि ये ना समझना कि मैं आत्मा हूं। चौथा है कि अपने आप को समझना कि मैं ये शरीर हूं, ये बॉडी हूं, है ना। अब देखिए इस बॉडी से संबंधित हम लोग क्या क्या करते हैं, है ना? जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस है वो क्या है? क्या है वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस? फैशन इंडस्ट्री, है ना। इस शरीर को कैसे सजाया जा सकता है अच्छी तरीके से, हर कोई इसी पे फोकस करता है, कैसे अच्छे कपड़े, लेटेस्ट फैशन, है ना। ब्यूटी पार्लर में जाके लोग इतने हर कोई तो नहीं जाता, पर माता जी जाती हैं, पर हर कोई नहीं जाता, माता जी से मना कर रही हैं, पर जैसा भी है हर कोई अपने शरीर को सजाना चाहता है ना। कोई 60 साल की उम्र में बाल को काले करके दिखाना चाहता है कि मैं जवान हूं, हर किसी को पता है ये बूढ़ा है, हर किसी को पता है, पर क्या सम हो और अदर अपने आपको डेकोरेट करना चाहते हैं, है ना। एक बार एक भक्त बहुत, एक व्यक्ति बहुत परेशान था, उसको किसने गधा बोला था। मैंने कहा इधर आ, शीशे में जा, देख तू गधा है? नहीं। तो अज्ञानता में कौन है? वो। तो दुखी किसको होना चाहिए? उसको। तू क्यों दुखी हो रहा है भाई? जो इग्नोरेंस में है उसको दुखी होना चाहिए, जो तेरे को गधा समझ रहा है, तो मनुष्य है, आराम से रहे। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को बॉडी से कंपेयर कर लेते हैं। कोई हमें कुछ बोलता है तो हमें हमें लगता है कि मुझे बोला गया है, पर वो हमें नहीं बोला गया, इस बॉडी को बोला गया है, इस शरीर को। हम इस शरीर से अभिन्न है। जब हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं? मेरा हाथ, है ना, मेरे बाल, मेरा चश्मा, मेरा पेन, मेरे कपड़े, है ना। हम ये तो नहीं कहते मैं हाथ, मैं चश्मा, मैं आंख, मेरी आंख। इसका मतलब मेरी आंख का मतलब ये मेरी आंख है और मैं कुछ और हूं, मैं डिफरेंट हूं इससे कुछ, है ना? तो हर कोई अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करके रखता है, ये है मोह। और पांचवा है महामोह। महामोह का क्या मतलब है? कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इज गोल ऑफ लाइफ, इंद्र तृप्ति जीवन का लक्ष्य है। जितनी इंद्र तृप्ति कर सकते हो, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकते हो, करो, है ना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जितनी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकते हो करो। तो ये क्या है? महामोह। तो पांच प्रकार की अज्ञानता हमने डिस्कस की। पहले क्या थी? तमिष। दूसरी अंध तमिष। तीसरी तमस। चौथी मोह। पांचवी महामोह। हमें पता होना चाहिए, हमें पांच अज्ञानताएं पता होना चाहिए, और यह भी पता होना चाहिए कि पांचों में से किस में हम अटके हुए हैं। क्योंकि अगर हमें पता होगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं तो हम ठीक करेंगे। किसी भी चीज की क्लैरिफिकेशन से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहां आ रही है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बता रहे थे कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता है और जो भक्तों का संघ है, दरअसल लोग, कुछ लोगों को पता है कि हम अज्ञानता में हैं, पर लोग भगवद गीता क्यों पढ़ने से घबराते हैं? क्यों लोग भक्तों का संग करने से घबराते हैं? क्यों लोग भगवान के कीर्तन करने से घबराते हैं? एक व्यक्ति से मैंने मिला, मैंने कहा आप आइए मंदिर आइए। वो कहते हैं जी मंदिर तो मैं आऊंगा नहीं, आपके कौन मंदिर, आपके मंदिर में ऐसा कुछ है जो आकर्षित करता है अपने प्रति। अरे बेवकूफ, ये तो ठीक बात है, इसमें गलत क्या है? जीव का स्वरूप है भगवान के प्रति आकर्षित होना, ये तो ठीक हो रहा है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इससे संबंधित एक स्टोरी बताते हैं, कथा बताते हैं। वो क्या कहते हैं, एक बार एक बच्चा था और उस बच्चे को एक घाव हो गया था, फोड़ा निकल गया था। तो बच्चे को जब फोड़ा निकला तो बच्चे को उसके पिताजी, क्योंकि पिता तो बच्चे से प्रेम करते ही हैं, डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर के पास जैसे ही लेके गए तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने बोला तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, इसको तो काटना पड़ेगा। जैसे ही बच्चे ने सोचा काटना पड़ेगा, सुना उसने रोना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ, ये मुझे मारेंगे, ये मुझे मारेंगे, है ना। तो वो बच्चा क्या सोच रहा था कि डॉक्टर क्या मेरा दुश्मन है, ये मुझे क्या कर रहा है, काट रहा है। पर क्या डॉक्टर दुश्मन है? अगर वो काट रहा है तो किसके भले के लिए काट रहा है? हमारे भले के लिए काट रहा है ना। तो इसी प्रकार से जो श्रीमद् भगवद गीता है, जो भक्तों का संघ है, वो क्या करता है, हमारी जो हमारी इग्नोरेंस है, अज्ञानता, उसे काटता है। पर जब वो काटता है तो हम घबराते हैं, हम सोचते हैं कि इसको काटा ना जाए, हम चिल्लाते हैं इसमें। पर जो काटा जा रहा है हमारी इग्नोरेंस को, दरअसल जब वो घाव कट जाएगा उसके बाद हमें रिलीफ मिलेगा, शांति मिलेगी। अभी हम लोग क्यों परेशान है, क्यों डिस्टर्ब्ड है? हर कोई खुश होना चाहता है, यस और नो? यस। क्या हम खुश हैं? नो। हर एफर्ट्स के बाद भी हम अल्टीमेट एंड किस पे होता है, फ्रस्ट्रेशन पे। किस कारण से? क्योंकि ये हमारा इटर्नल नेचर नहीं है। दिस इज नॉट आवर नेचर कि हम लोग हर लिविंग एंटिटी की सेवा करें। हम क्या कर रहे हैं कि कोई पेड़ है और हम पेड़ की हर पत्ते पे पानी डाले जा रहे हैं, जड़ को छोड़कर। वो पत्ता साफ हो जाएगा पर पेड़ हरा भरा कभी नहीं हो पाएगा। आप सोचिए, अगर एक हाथ सोचे कि मैं रसगुल्ला मुंह में क्यों डालूं, मान लीजिए हाथ जिद पड़ जाए मैं रसगुल्ला मुंह में क्यों डालूं, इसे मैं खुद इंजॉय करूंगा, तो सोचिए उस शरीर का, हाथ का क्या होगा। मान लीजिए आपके सामने खाने की प्लेट पड़ी है ना, सब कुछ पड़ा आपके सामने, और हाथ कहे मैं इसको मुंह में क्यों डालूं, मैं पेट को क्यों दूं, ये मैं खुद इंजॉय करूंगा इसे, तो क्या होगा उसका हाल? थोड़े समय में वो हाथ उठ भी नहीं पाएगा, क्योंकि जब वो खाएगा मुंह से, जब पेट में जाएगा तो उसको नरिशमेंट मिलेगी, उससे वो उसको स्टैमिना मिलेगा कि हाथ भी उठा पाएगा वो। तो हम लोग क्या करते हैं, हर जगह जगह जड़ जड़ में पानी डाल, पत्ते पत्ते में पानी डाल रहे हैं, पर जो जड़ है उसमें पानी नहीं डाल रहे। हर किसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं पर भगवान को सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं कर रहे। उस कारण से क्या हो रहा है, जिसको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी दुखी है और हम भी दुखी हैं, है ना। नॉर्मली देखा जाता है, मतलब ना जैसे कोई फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए दिवाली आई, कोई त्योहार आया, कुछ भी आया, तो लोग बिल्कुल क्रेजीनेस की लेवल पे होते हैं, बिल्कुल कि हमें कुछ देना है किसी को, है ना। और बुरा मत मानिएगा, कोई पंजाबी फैमिली से अगर बिलोंग करता है तो उनके अंदर एक नेचर होता है ना, एने इन्ना देता है तो मैंने इन्ना देना है, तो उनके अंदर अपना हो रहता है कि उसने इतना दिया तो मुझे इतना देना है, तो ये बिल्कुल बैठा होता है अंदर। तो होता क्या है कि जिसको दिया है वो भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता और हम भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते, क्योंकि ये हमारा नेचर नहीं है। और जो भक्तों का संघ है, जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हमें इस इग्नोरेंस से ऊपर उठना है और हमें यहां तक पहुंचना है, अहम सर्वस्य प्रभवो, कि कृष्ण क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं हर चीज का प्रभु हूं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, आई एम द कंट्रोलर, भगवान कह रहे हैं मैं कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है, मुझसे प्रत्येक वस्तु निकली है। जो बुद्धिमान है ये भली भांति जानते हैं, जो बुद्धिमान है, जो भक्त है, वो भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से तत्पर रहते हैं मेरी सेवा करने में। तो ये नेचुरल एक टेंडेंसी होती है भक्त की कि भगवान की सेवा के बिना नहीं रह सकता, वो कुछ भी क्यों नहीं करेगा पर भगवान की सेवा के लिए करेगा, ये नेचर होता है उनका। तो हमें भी क्या करना है, अब इस नेचर को हमें जागृत करना है, क्योंकि ये जो स्वभाव है, जीव का स्वभाव कि भगवान का दास है, ये हर किसी के अंदर सुषुप्त अवस्था में पहले से ही है। हमें सिर्फ भगवान के स्मरण करने माध्यम से इसे जागृत करना है, और हमें ये याद रखना है कि हम ये शरीर नहीं है, और ये जो शरीर हमें मिला भी है, ये हमें बॉडी मिली है भगवान की सेवा करने के लिए। एक बार सनातन गोस्वामी को क्या हुआ, आप मंदिर में आते हैं तो जो नीचे गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा के साथ सिक्स गोस्वामी की फोटो है, श्री रूप, श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, सिक्स गोस्वामी की सेवा है, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौ नेताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। तो मंदिर में दर्शन करते समय आप देखेंगे कि सनातन गोस्वामी के पूरे शरीर पर घाव हो गए थे। हरे कृष्णा, आप सब कृपया बात मत कीजिए और बैठ जाइए। तो सनातन गोस्वामी के पूरे शरीर पर घाव हो गए थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं शरीर को खत्म करूं। तो इस प्लानिंग के साथ वो जगन्नाथपुरी गए और उन्होंने सोचा कि रथ के पहिए के नीचे आके मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो जैसे ही इस मोटिव से वो पहुंचे जगन्नाथपुरी, चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें पकड़ लिया और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें क्या बोला कि सनातन, तुम अपने शरीर को खत्म करने चाह रहे हो, पर तुम ये भूल गए हो कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर मेरा है और इस शरीर से मुझे बहुत सेवाएं करनी है अभी। तो उसी प्रकार से जो हमारी बॉडीज हैं, अब किसी भी व्यक्ति का नॉर्मल प्रश्न होगा कि प्रभु जी आपने बताया मोह का मतलब है कि अपने आप को शरीर समझना है ना। तो अपने आप को शरीर समझना, अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो क्या करें? अगर हम इससे अपने आप को बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है। हरे कृष्णा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया बात मत कीजिए, जो भी बात करना चाहते हैं बाहर जाके बात कर सकते हैं। तो ये समझना कि मैं शरीर हूं ये अज्ञानता है, ये जो बॉडी है इसे हमें भगवान की सेवा में लगाना है। और जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम नेचुरली फील करेंगे कि हम भी खुश हैं और जितने भी लोग हमारे से संबंधित हैं, जितने भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, वो सब भी खुश है इससे। तो यहां पर जो भगवान बता रहे हैं इसी के भगवदगीता 10.8 के नेक्स्ट वर्स में भगवान इसका सॉल्यूशन बताते हैं। भगवान बता रहे हैं कि अगर ये समझना चाहते हो मैं प्रभु हूं तो कैसे समझ सकते हो। भगवान बता रहे हैं, मत चिता मत गत प्राणा बोध यंता परस्परम कथन तष्ट माम नित्यम तुष्यंति च रमंती च। अब भगवान यहाँ पर हैप्पीनेस का फॉर्मूला बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें खुशी मिल पाएगी। भगवान कह रहे हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। तो क्या है विचार? इसका मतलब क्या है? स्मरण। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार जो वो सोचते हैं वो किस में वास करते हैं? मुझ में। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, जो उनका जीवन है वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। इसका मतलब क्या है? वो भगवान की सेवा के संबंधित सुनते हैं, श्रवण करते हैं। और तीसरा क्या है? और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो क्या है, वो क्या करते हैं? अब कीर्तन भी करते हैं, भगवान के नाम का गान करते हैं। तो हमें भी क्या करना है? जो हम सुन रहे हैं, जैसे आपने सुना, अब ये अगर आपने सुना तो आप क्या होगा, थोड़ी देर में भूल जाएंगे। कुछ लोग उठते ही भूल जाएंगे, कुछ लोग बाहर निकल देंगे तो भूल जाएंगे, और कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा रात गए कल भूल जाएंगे, है ना। तो इसको रिमाइंड करने के लिए क्या करना है? हमें स्मरण करना है, जो भी सुना है उसको याद करना है कि क्या सुना था। फर्स्ट प्रोसेस। दूसरा, इसका अब हमें क्या करना है? स्मरण करने के बाद इसका कीर्तन करना है। जो आपने सुना है वो बताइए सबको, प्रचार कीजिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं, प्राण आचे यार से हो तो प्रचार। किसी भी व्यक्ति को अगर जज करना चाहिए कि वो जीवित है या नहीं है, इसको जज करने का तरीका क्या है? वो प्रचार कर रहा है नहीं कर रहा। अगर प्रचार कर रहा है तो इसका मतलब वो जीवित है, अगर प्रचार नहीं कर रहा है तो जीते हुए भी वो मृत के समान है, मरे हुए के समान है। तो हमें क्या करना है? भगवद गीता के इस ज्ञान का प्रचार करना है। अगर हम खुद नहीं प्रचार कर सकते तो भगवद गीता अवेलेबल है, भगवद गीता से पढ़िए और प्रचार कीजिए। भगवद गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक और 9वां श्लोक, इसका प्रचार कीजिए। तो ये प्रचार करने माध्यम से क्या होगा, हम कभी भूलेंगे नहीं इसे, और जब भी नीड पड़ेगी, क्योंकि देखिए शास्त्र का मतलब है, ज्ञान का मतलब है, शास्त्र का मतलब जो शास्त्र का कार्य करे, हमारी इग्नोरेंस को, हमारी अज्ञानता को काटे। तो अगर मान लीजिए हमें जब जरूरत पड़ी और हमें याद ही नहीं रहा तो उसका फायदा क्या होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमेशा प्रचार में अपने आप को लगाए रखना पड़ेगा, हमेशा प्रचार में। मंदिर आए हफ्ते में एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, जिनके पास समय है हफ्ते में 7 दिन आए, रात को शाम को 8 से 9 गीता क्लास होती है और सुबह 8 से 9 भागवतम कथा होती है, सुने। उसके बाद क्या कीजिए? इसका प्रचार कीजिए। जिससे भी आप मिलते हैं, यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिससे भी आप मिलते हैं इस भगवान के नाम का उपदेश कीजिए। अगर कुछ प्रचार नहीं कर सकते तो हरे कृष्णा बोलिए, है ना। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर फोन उठाता तो क्या बोलता है? हेलो, है ना। जो भक्त लोग फोन उठाते तो क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलने से क्या होता है, अपना भी प्योरिफिकेशन होता है, सामने वाले व्यक्ति का भी प्योरिफिकेशन होता है, हर किसी का शुद्धिकरण होता है। तो किसी ना किसी माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को हमें चाहिए कि हम इसका प्रचार करें। जब हम प्रचार करेंगे तो हमारा कन्विक्शन भी बढ़ेगा, हम खुद भी जुड़ेंगे, और हमें ये चाहिए कि नियमित रूप से भगवान की माला का जप करें। क्योंकि हर वेदों का, हर शास्त्रों का केवल एक ही निचोड़ है, भगवान के नाम का जप। अभी हम एक व्यक्ति से मिले, अभी हम किसी सिख कम्युनिटी के एक जो मेंबर थे, अध्यक्ष थे, मतलब प्रेसिडेंट थे गुरुद्वारे के, उनसे मिले तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि देखिए, जो पूरा ब्रह्मांड है ये हरिनाम संकीर्तन से चल रहा है, और अधिकांश लोग ये जब ये भूल जाते हैं तो उनके जीवन में दुख आता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपने आप को हरिनाम संकीर्तन में, भगवान के कीर्तन में लगाए रखना चाहिए। जब हम भगवान के कीर्तन में लगे रहेंगे तो उससे सारा माहौल, सभी कुछ शुद्ध हो जाता है, जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है। अभी हमारे एक फ्रेंड ने एक मेल भेजा था हमें, अगर किसी को मेल चाहिए हो तो बाद में अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं, उसे पूरा सेंड कर देंगे। उसमें उन्होंने एक इटली के एक ऐसे घर के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया, उस घर में पिछले 16 साल से वो घर भूत से भरा हुआ था। जब उस घर में जाते थे भक्त लोग, जब उस घर में घुसे तो उन्होंने कुर्सियों को जमीन से उठते हुए देखा, ड्रॉर्स को स्मैश होते हुए देखा दीवार के साथ। पिछले 16 साल से ऐसा चल रहा था। भक्तों ने क्या किया, 12 घंटे रेगुलर कीर्तन किया, रेगुलर, और ये सारी चीजें होती जा रही थी उनकी आंखों के सामने। 12 घंटे कीर्तन करने के बाद जो 16 साल से प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि वो डिवोटी फैमिली थी इसलिए भक्तों गए थे, जो 16 ईयर से जो प्रॉब्लम चल रही थी 12 घंटे कीर्तन करने के बाद वो खत्म हो गया बिल्कुल। तो क्या है, ये बड़े से बड़े जो भूत हैं, जो कुछ भी हैं, हमारे भी देखिए, हम भी घोस्टली हॉन्टेड है। किसी पे भूत चढ़ता है तो उसकी निशानी क्या होती है, अपने आप को भूल जाता है। कोई पागल होता है तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अपने आप को भूल जाता है ना। पागल खाने में जाते हैं, एक पागल डेस्क के ऊपर खड़े होकर बोल रहा होता है, मैं प्रधानमंत्री हूँ भारत का, इसका मतलब प्रधानमंत्री है, नहीं भूल गया है। तो हम भी क्या करते हैं, हम भी भूल गए हैं, हम भी पागल की तरह एक्ट कर रहे हैं, है ना। हम भी बोलते हैं मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा ये कार्य है, मैं भारतीय हूँ, मैं ये हूँ, अपने आप को डेजिग्नेट कर दिया हमने काफी चीजों से, है ना। मैं इंडियन हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं खत्री हूँ, इन चीजों से हमने अपने अपने आप को लिंक कर दिया है। पर रियलिटी में हम कौन है, हम भगवान के दास हैं, है ना। तो जिस प्रकार से एक पागल व्यक्ति या जिस पर भूत चढ़ जाता है वो एक्ट करता है, अपने रियल आइडेंटिटी को भूल जाता है, उस प्रकार से हम अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल गए हैं और अपने को कुछ और मान के वर्क कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी रियल आइडेंटिटी को याद रखना है और हमेशा भगवान के नाम कीर्तन में जुड़े रहना है। अगर हम इसी प्रकार से भगवान के नाम कीर्तन में जुड़े रहेंगे तो हम क्या फील करेंगे कि हो सकता है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, पर वो प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए, पांडवों को जो पूरे विश्व के राजा थे 13 साल के लिए निकाल दिया गया था, पर 13 साल तक वो दुखी नहीं थे, वो खुश थे। किस लिए, क्योंकि भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान कृष्ण उनके साथ थे। 13 साल जब वनवास में रहने के बाद, वन में रहने के बाद, 1 साल 12 साल रहने के बाद और 1 साल अज्ञातवास में रहने के बाद, जब कृष्ण छोड़ के जा रहे थे कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, तो कुंती महारानी ने क्या बोला, विपदा संतुतः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कुंती महारानी ने बोला कि कृष्ण मुझे ऐसा कोई भी सुख नहीं चाहिए जिस सुख में आप ना हो। तो कुंती महारानी ने क्या प्रार्थना की कि कृष्ण मैं चाहती हूं कि हमें दोबारा जलाया जाए लक्षाद्रि के अग्नि में, हमें दोबारा वन में भेजा जाए, दोबारा मेरे बेटों को जहर देके मारा जाए। जब कम से कम ये जब प्रॉब्लम्स आ रही थी आप तो मेरे साथ थे, अब जब प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप मेरे साथ नहीं हो ना। हम भी देख सकते हैं जब बच्चे की लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो बच्चा क्या बोलता है, माँ, है ना, पहला क्या रहता है, माँ ना। इसी प्रकार से जब भक्त की जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो भक्त क्या बोलता है, कृष्णा कृष्णा, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने यही बोला, कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्ष माम। तो प्रार्थना करें चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वो प्रार्थना करें कि कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट मी, रक्षा कीजिए। तो भक्तों के जीवन में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो भक्त भगवान के और समीप जाते हैं, क्यों, क्योंकि जब उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो भगवान के भक्तों के पास और कोई सहारा नहीं होता, केवल भगवान का होता है। इसलिए हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आए, ये जो सॉन्ग है कृष्णा 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 है, ये कृष्णा बुक आपको बीपीटी से मिल जाएगी, उसकी बिगनिंग में लिखा हुआ है। अगर आप इसे डेली पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है और इसे बहुत अच्छा गाया जा सकता है। कृष्णा 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 हे कृष्णा, कृष्णा 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 हे कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्षम कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्षम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षम राम कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 रामा। तो इतना प्योरिफाइंग है भगवान का नाम कि जब भी, इसलिए भगवान की लाइफ, भक्तों के जीवन में अगर प्रॉब्लम्स भी आती हैं, दुख भी आता है, तो उन स्थिति में भी भक्त लोग खुश रहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि भक्त लोग उस दुख को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, एक मौका समझते हैं कृष्ण के और पास जाने का। परीक्षित महाराज जब उन्हें श्राप मिला 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, घबराए नहीं, वो दुखी नहीं हुए 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्या करूं, है ना, प्रॉपर्टी बच्चों के नाम करके जाता हूं, चलो, कुछ नहीं किया। पता लगा आपकी मृत्यु होने वाले 7 दिन बाद, तुरंत त्यागा महल और चले गए कथा सुनने के लिए भगवान की। परीक्षित महाराज को तो पता था 7 दिन बाद मृत्यु आएगी, क्या हमें पता 7 दिन बाद मृत्यु आएगी? नहीं। तो भक्तों की लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आती है वो इसलिए आती है भक्त लोग भगवान के और समीप आ सके, और क्लोज आ सके। बिकॉज कृष्णा इज अ जेलस लवर, कृष्ण जेलस लवर है, ये हमेशा याद रखिए। कृष्ण अपने भक्तों को किसी और के साथ नहीं देख सकते, कृष्ण नहीं देख सकते कि मेरे भक्त मेरे अलावा किसी और की भक्ति करें। इसलिए क्या करते हैं, कृष्ण जब ये चीज देखते हैं तो क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स लाते हैं। जब प्रॉब्लम आती है तो वो कुछ रहता ही नहीं, फिर वो कृष्णा 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 हे करते करते भगवान की तरफ दौड़ता है दोबारा। जब गोवर्धन लीला में जब इतनी तेज घमासान बारिश पड़नी शुरू हुई तो ब्रजवासियों ने क्या किया, छातों के लेने भागे। क्या किया ब्रजवासियों ने, कृष्ण की तरफ भागे, कृष्ण हमारी सहायता कीजिए। बस, तो जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आता है इसमें घबराना नहीं चाहिए। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र को जीवन में उतारते हैं, तो हम प्रॉब्लम से घबराएंगे नहीं, जीवन में हर समस्या को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका समझेंगे कृष्ण के पास आने का। तो हमें भी ये चाहिए कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी क्यों ना आए, किसी भी स्थिति में हम भगवान को ना भूलें, कृष्ण को ना भूलें। क्योंकि अगर हम कृष्ण को भूलते हैं तो ये सबसे बड़ा दुख है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया है कि अगर आपने बहुत तपस्या कर ली और कृष्ण का स्मरण नहीं किया तो ऐसी तपस्या का क्या फायदा, और अगर आपने कृष्ण का स्मरण कर लिया और तपस्या नहीं की तो ऐसी तपस्या करके भी क्या फायदा था। मुख्यतः क्या जरूरी है, कृष्ण का स्मरण होना, भगवान के नाम का स्मरण होना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी हम भगवान के नाम के कीर्तन में, भगवान के कीर्तन को श्रवण करने में, है ना, हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने में, जब भी हम इन चीजों में लगते हैं हम देखेंगे कि हमारे जीवन के सारे दुख सारे कलेश अपने आप सब उड़ जाते हैं। जब पानी को उबाला जाता है तो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। उसी प्रकार से जब हम उबालते हैं अपने आप को इस हरिनाम संकीर्तन की अग्नि में, तो हमारे सारे दुख सारी समस्याएं सारी परेशानी क्या होती है, उड़ जाती है। तो हमें भी चाहिए कि हमेशा नियमित रूप से मंदिर में आइए। ऐसा नहीं कि एक बार आए और दोबारा कभी बस, है ना। एक भक्त से पूछा कि प्रभु जी काफी समय हो गया आप मंदिर नहीं आए। उन्होंने बोला प्रभु जी मैं तो रेगुलर आता हूँ। मैंने कहा अच्छा रेगुलर आते हैं, मैंने कहा मैं तो देखा नहीं आपको। कह रहे हाँ हर जन्माष्टमी पे आता हूँ। तो उसको रेगुलर थोड़ी कहते हैं, है ना। शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ भक्त को दिन में दो बार आना चाहिए मंदिर, सुबह और शाम को, काम पे जाने से पहले और काम से आने के बाद। अगर हम दो बार नहीं कर सकते, है ना, एक बार आए दिन में, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो हफ्ते में दो तीन बार आए मंदिर। शाम को कीर्तन में भाग, आरती अटेंड करें, कीर्तन में भाग लें और भगवान की कथा सुन के जाएं। पैकेज आइए तो ना, कंपनी पैकेज देती है ना, तो ये पैकेज मिल रहा है, इतना सुंदर पैकेज है आपका। अब ये हमारे हाथ में कि कौन कौन इस पैकेज का फायदा उठा पाएगा। तो आप सभी से प्रार्थना है, जो भी भगवान के नाम का जप नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे, उनसे रिक्वेस्ट है कि बीबीटी अभी भी खुली है, अगर कोई लेना चाहे तो एक माला लेके जाइए। इस माला में 108 मोती होते हैं, हर मोती पे हमें यही जप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। और 108 मोती एक माला करने में 7.5 मिनट लगते हैं, दो माला करने में 15 मिनट लगते हैं। तो हमें चाहिए कि लाइफ के, अपने जीवन के 24 घंटे में से 15 मिनट तो कम से कम भगवान को दें। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि कम से कम हमें 16 माला का जप करना चाहिए, मतलब 2 घंटे दिन में भगवान को देना चाहिए 24 घंटे में से, है ना। अगर हम इतना नहीं कर पा रहे तो शुरू करने के लिए 2 माला करें कीजिए कम से कम। पर हमें हर व्यक्ति को माला करनी चाहिए, हर किसी को, क्योंकि इसी बहाने से, इसी तरीके से हम किस न तरीके से हम भगवान से समीप रहते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं। तो आप सभी से ये निवेदन है, समय भी काफी हो गया है, जो भी जप नहीं कर रहे उनसे निवेदन है माला लीजिए, जप कीजिए, भक्तों का संग कीजिए और नियमित रूप से आइए, भगवत गीता की कक्षा सुनिए। जिनके पास सुबह समय है सुबह 8 से 9 आके श्रीमद् भागवतम सुनिए। भगवत गीता भगवान की वाणी है और श्रीमद् भागवतम भगवान की लीलाएं हैं। तो जो भी आप सुनना चाहें, गीता है भागवतम, आप सुन सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद।